एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मार्मिक और गहरी किताब पर बात करने वाले हैं।
जी नमस्कार।
किताब है एलिजाबेथ गिलबर्ट की ऑल द वे टू द रिवर, ए मेमोयर ऑफ लव, लॉस एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी।
हाँ, 2019 में आई थी ये, और ये वही एलिजाबेथ गिलबर्ट है जिन्हें हम में से कई लोग उनकी पिछली जबरदस्त हिट किताब ईट प्रे लव से जानते हैं।
बिल्कुल, एलिजाबेथ गिलबर्ट अमेरिकी लेखिका, जन्म 1969 का। ईट प्रे लव ने तो उन्हें मतलब दुनिया भर में पहचान दिलाई थी।
सही, वो किताब थी अपने तलाक के बाद खुद को खोजने की यात्रा, इटली, भारत, इंडोनेशिया, एक बाहरी सफर था वो।
हाँ, वो आत्मखोज, रोमांच, एक तरह से अपने लिए खुशी ढूंढने की कहानी थी, और इसीलिए शायद ऑल द वे टू द रिवर इतनी अलग और महत्वपूर्ण महसूस होती है, क्योंकि ये बाहर जाने की नहीं बल्कि अंदर ठहरने की कहानी है।
बिल्कुल सही कहा, ये बाहरी दुनिया की यात्रा नहीं बल्कि एक बहुत ही निजी, मुश्किल और गहरी आंतरिक यात्रा है। ये भागने की नहीं बल्कि किसी के साथ बिल्कुल अंत तक पूरी तरह से मौजूद रहने की कहानी है।
हाँ, जिसे शायद रेडिकल प्रेजेंस कहते हैं, पूरी निष्ठा से साथ होना।
वही, ये किताब है गिलबर्ट और उनकी सबसे प्रिय दोस्त, जो बाद में उनकी साथी बनी, रया इलियास, उनके जीवन के आखिरी बहुत पवित्र और हाँ दिल तोड़ने वाले समय के बारे में।
रया इलियास, उनके बारे में थोड़ा और बताइए।
रया सीरियाई मूल की थी, बेहद प्रतिभाशाली संगीतकार, फिल्म मेकर, हेयर ड्रेसर भी। गिलबर्ट लिखती हैं कि वो एक शक्ति थी, करिश्माई, बेबाक, रचनात्मक आग से भरी हुई।
और ये किताब उस आम धारणा को भी तोड़ती है कि हर कहानी का अंत सुखद होता है ना?
हाँ, ये उस हैप्पी एंडिंग वाले मिथक को चुनौती देती है। ये दिखाती है कि जीवन का गहरा अर्थ शायद अपनी खुशी ढूंढने में नहीं बल्कि किसी प्रियजन के साथ उनके रास्ते के अंत तक बिना किसी स्वार्थ के चलने के उस दर्द भरे लेकिन फिर भी खूबसूरत सफर में मिलता है।
तो चलें इस भावनात्मक सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। किताब की शुरुआत कैसे होती है? क्या वो सीधे रैया की बीमारी पर आती है?
नहीं, शुरू में वो थोड़ा पीछे देखती हैं, उस समय का जिक्र करती हैं जब रैया की बीमारी का पता नहीं चला था। अपनी आज़ादी, अपना करियर, ईट प्रे लव की सफलता के बाद की जिंदगी।
अच्छा, एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार कर दी है।
हाँ, वो बताती हैं कि उनका बचपन कनेक्टिकट के एक गांव में एक क्रिसमस ट्री फार्म पे बीता। वहां से आत्मनिर्भरता सीखी, कहानियों से लगाव हुआ, फिर पत्रकारिता का शुरुआती दौर, दुनिया घूमना, इन सब ने उन्हें भावनात्मक रूप से तैयार किया था, शायद अनजाने में ही।
ये जानना जरूरी है क्योंकि ये उस बड़े बदलाव को समझने में मदद करता है जिससे वो गुजरने वाली थी।
बिल्कुल, वो महिला जो अपना दिल जोड़ने दुनिया घूमी थी, अब उसे किसी और का दिल थामने के लिए रुकना पड़ा एक ही जगह।
और ये मोड़ आता है रैया इलियास के साथ, उनके रिश्ते और फिर उनकी बीमारी से।
जी, किताब का असली विकास किसी बाहरी चीज में नहीं, उनके रिश्ते की गहराई में है। वो 2000 के दशक की शुरुआत में न्यूयॉर्क में रैया से पहली बार मिलने का जिक्र करती हैं।
और रैया का किरदार बहुत मजबूती से उभरता है, जैसा आपने बताया, सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि
वो एक ताकत थी। गिलबर्ट कहती हैं कि रैया वो इंसान थी जो उनके एलिजाबेथ गिलबर्ट वाले सार्वजनिक चेहरे के पीछे के असली इंसान को देखती थीं। 15 साल से ज्यादा की गहरी दोस्ती, सहारा, राजदार, एक अटूट रिश्ता था उनका।
साझा इतिहास, रचनात्मक जुड़ाव, ये सब था। लेकिन फिर वो पल आता है जो सब बदल देता है।
हाँ, रैया को लाइलाज पैंक्रियाटिक और लिवर कैंसर का पता चलना, ये खबर ये गिलबर्ट की जिंदगी में जैसे एक विस्फोट की तरह थी। सब कुछ साफ हो गया, सारे भ्रम हट गए।
और इसी मुश्किल घड़ी में उन्हें अपने एहसास का पता चला।
हाँ, उन्हें शिद्दत से यह एहसास हुआ कि रैया के लिए उनकी भावनाएं सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये उनके जीवन का सबसे सच्चा, सबसे गहरा प्यार है। देखिए, बीमारी ने इस प्यार को बनाया नहीं,
लेकिन उसे जाहिर कर दिया।
उसे अनदेखा करना नामुमकिन कर दिया।
बिल्कुल,
अब इसे छुपाना या बिना पूरी तरह जिए रहना संभव नहीं था।
ये तो बहुत बड़ा एहसास रहा होगा, और इसी के बाद वो बड़ा फैसला आता है।
जी, गिलबर्ट वो कदम उठाती हैं जो इस किताब का और शायद उनकी जिंदगी का भी केंद्रीय बिंदु है। वो अपने पति जोजनून्स, जिनसे वो ईच प्रे लव यात्रा के दौरान मिली थी, उनसे अलग होने का फैसला करती हैं,
ताकि वो पूरी तरह से रैया की देखभाल कर सकें।
हाँ, खुद को पूरी तरह से रैया के प्रति समर्पित करने के लिए। यह आसान नहीं था, यकीनन, लेकिन उनके लिए यह जरूरी था, और यहीं से किताब का दिल, उसका मर्म शुरू होता है।
देखभाल की वो यात्रा।
हाँ, उसका बहुत ही करीबी, ईमानदार और दिल को छू लेने वाला वर्णन। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे पल हैं। मिनट दर मिनट का ब्यौरा कि किसी बीमार प्रियजन की देखभाल करने का असल मतलब क्या होता है।
अस्पतालों के चक्कर, डॉक्टरों की वो भाषा जो समझ नहीं आती।
हाँ, इंतजार गाहों का सन्नाटा, रिपोर्ट्स का डर, झूठी उम्मीदें और फिर अचानक लगने वाले झटके, ये सब है उसमें।
लेकिन इन बाहरी मुश्किलों के साथ साथ उस नज़दीकी का भी जिक्र करती हैं जो ऐसे समय में बनती है।
बिल्कुल, वो पवित्र नज़दीकी, रैया को दवा देना, उनके लिए खाना बनाना, दर्द भरी रातों में बस हाथ थामे बैठे रहना, और शायद सबसे ज़रूरी, बस सुनना। बिना सलाह दिए, बिना ठीक करने की कोशिश किए, बस उनके डर को, उनकी बातों को सुनना।
यहीं पर प्यार सिर्फ एक भावना नहीं रहता, एक क्रिया बन जाता है ना?
बिल्कुल, एक रोजमर्रा का काम बन जाता है। किताब का शीर्षक भी बहुत कुछ कहता है, ऑल द वे टू द रिवर।
हाँ, ये नदी वाला रूपक, इसका क्या मतलब है?
ये बहुत शक्तिशाली रूपक है। नदी यहाँ बीमारी की लगातार आगे बढ़ती धारा है, और समय का गुजरना भी, जिसे आप रोक नहीं सकते।
अब धारा के खिलाफ लड़ नहीं सकते,
तो आपको उसके साथ बहना सीखना होता है।
अंत तक।
हाँ, उसके साथ चलना होता है, और उन्होंने रैया के साथ यही किया। उन्होंने एक निजी, अनौपचारिक समारोह भी किया, शादी नहीं बल्कि एक वादा, कि वो इस सफर में, इस नदी में अंत तक साथ रहेंगे।
किताब के आखिरी हिस्से मौत और मरने की प्रक्रिया पर आते हैं। वो पढ़ना शायद मुश्किल होगा।
मुश्किल है, लेकिन गिलबर्ट ने रैया के शारीरिक रूप से कमजोर होने का वर्णन बहुत सम्मान और कोमलता से किया है। वो इसे सिर्फ एक अंत या हार के तौर पर नहीं देखती।
तो फिर किस तरह देखती हैं?
वो इसे एक आध्यात्मिक संदर्भ देती हैं, साहस, गरिमा, समर्पण। रैया की मृत्यु को वो नदी का समंदर में मिलना बताती हैं, एक शांतिपूर्ण, अवश्यंभावी प्राकृतिक विलय।
और किताब मौत पर खत्म नहीं होती?
नहीं, वो उस प्यार की गूंज पर खत्म होती है जो पीछे रह गया है, और उस खालीपन पर, उस दुख पर, जिसके साथ अब गिलबर्ट को अकेले जीना सीखना है।
ये पूरी कहानी, ये गिलबर्ट के अपने जीवन दर्शन में एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाती है। ईट प्रे लव में वो दुनिया में बाहर जा रही थी, खुद को खोज रही थी।
हाँ, वो फैलने का, विस्तार का दर्शन था,
लेकिन यहाँ दर्शन बिल्कुल उलट है, सिमटने का, आत्मसमर्पण का।
दुनिया में फैलने की बजाय एक इंसान के लिए, एक रिश्ते के लिए खुद को समर्पित करना।
बिल्कुल, और गिलबर्ट ये महसूस करती हैं कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना शायद किसी आश्रम में नहीं, बल्कि किसी दूसरे इंसान की देखभाल के इस खामोश, बिना ग्लैमर वाले, और हाँ, अक्सर बेहद तकलीफदेह काम में मिलती है।
तो ये खुशी की तलाश से हटकर प्रेम का अभ्यास करने जैसा है।
हाँ बिल्कुल, प्रेम का अभ्यास। यहाँ प्रेम एक क्रिया है, रोज का सचेत चुनाव, चुनाव कि आप मौजूद रहेंगे, सेवा करेंगे, साक्षी बनेंगे, दूसरे के दुख के लिए जगह बनाएंगे, बिना उसे ठीक करने की कोशिश किए। यो उस रैडिकल एक्सेप्टेंस की बात है, कट्टर स्वीकृति।
जी,
जो है, जैसा है, उसे पूरी तरह स्वीकार करना, बजाय इसके कि जो हो सकता था उसकी चाहत रखना। गिलबर्ट दिखाती है कि असली शांति दर्द से भागने में नहीं, बल्कि दर्द के बीच रहते हुए भी उसमें अर्थ और सुंदरता खोजने में है। ये हार मानना नहीं है,
बल्कि लहरों के साथ तैरना सीखना है, जब आप उन्हें रोक नहीं सकते।
बिल्कुल सही।
ये सब करने के लिए, इतनी हिम्मत जुटाने के लिए गिलबर्ट की प्रेरणा क्या थी? जाहिर है, रैया के लिए प्यार तो था ही।
हाँ, वो तो मुख्य प्रेरणा थी, बिना शर्त वाला प्यार। जब रैया की बीमारी का पता चला, तो जैसे उनका जीवन का उद्देश्य एकदम साफ हो गया, रैया के बचे हुए दिनों को प्यार, आराम और सम्मान से भरना।
लेकिन क्या सिर्फ यही था, या कुछ और भी था?
हाँ, एक और बड़ी प्रेरणा थी प्रामाणिकता की, मतलब सच्चाई से जीने की एक तीव्र इच्छा। इतने साल सार्वजनिक जीवन जीने के बाद उन्हें लगा कि जिंदगी के इस सबसे अहम और मुश्किल अध्याय को वो छुपाकर नहीं जी सकती, उन्हें इसे ईमानदारी से जीना था।
हाँ, पूरी ईमानदारी और खुलेपन से, रैया के साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक करना, वो इसी दिशा में एक कदम था। ये शर्म और छिपाव के खिलाफ एक ऐलान था।
और शायद लिखना भी एक तरह की प्रेरणा रहा होगा, इस अनुभव को शब्दों में ढालना।
निश्चित रूप से, लिखना उनके लिए हमेशा से खुद को समझने का जरिया रहा है, इस असहनीय दुख को सहने लायक बनाने का, रैया की याद को सम्मान देने का और उनके प्यार की कहानी को दुनिया के सामने रखने का एक तरीका था ये किताब। ये शोक मनाने की प्रक्रिया का भी हिस्सा था।
जिस तरह गिलबर्ट ने इस मुश्किल हालात का सामना किया, वो उनके पिछले अनुभव से बिल्कुल अलग था। ईट प्रे लव में वो दर्द से दूर भागी थीं।
हाँ, यात्रा पर निकल गई थीं। यहाँ वो बीमारी और मौत के डर से भागी नहीं, बल्कि उसके और करीब आ गईं, डटी रहीं, सामना किया।
इस नजरिए को हम कैसे समझ सकते हैं? इसके क्या पहलू थे?
इसे हम तीन मुख्य हिस्सों में देख सकते हैं। पहला था प्रैग्मैटिक डिवोशन, मतलब व्यवहारिक समर्पण। वो सिर्फ भावनात्मक रूप से साथ नहीं थीं।
उन्होंने व्यवहारिक रूप से भी सब कुछ किया।
बिल्कुल, कैंसर के बारे में पढ़ना, दवाइयों के जटिल शेड्यूल को समझना, अस्पताल के सिस्टम में रिया की वकील बनना, ये प्यार सिर्फ बातों का नहीं, कर्म का था। सक्रिय, व्यवहारिक, बिना थके।
और दूसरा पहलू?
दूसरा था इमोशनल सरेंडर, भावनात्मक समर्पण। ये समझना कि सब कुछ उनके नियंत्रण में नहीं है, वो बीमारी को रोक नहीं सकती।
वो नदी के बहाव को मोड़ नहीं सकती।
सही, तो हालात बदलने की कोशिश करने के बजाय उस बहाव के साथ चलना सीखा। नियंत्रण छोड़ने का ये भाव बहुत जरूरी था यहाँ।
और तीसरा, जो शायद सबसे अहम था,
तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली था अनफ्लिंचिंग प्रेजेंस, अडिग उपस्थिति, बिना डगमगाए, बिना नजरें चुराए, बस वहां मौजूद रहना।
ये उनका सबसे बड़ा हथियार था।
हाँ, खामोशी में रया के साथ बैठना, दर्द में हाथ थामना, मौत के डर को सुनना, लाइलाज बीमारी को ठीक करने की कोशिश नहीं करना, बल्कि उस अनुभव का साक्षी बनना, पूरी तरह से मौजूद रहना।
इस पूरी यात्रा में कई ऐसे मोड़ आए होंगे जिन्होंने कहानी की दिशा बदल दी। तीन सबसे अहम मोड़ कौन से थे?
जरूर, पहला और सबसे बड़ा मोड़ तो जाहिर है रया की बीमारी का पता चलना ही था, वसंत 2016 में।
हाँ, वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया।
बिल्कुल, वो गिलबर्ट के लिए सच्चाई का सामना करने का पल था। इसने उन्हें अपने जीवन, शादी, रिश्ते, भावनाएं, सब पर दोबारा सोचने को मजबूर किया। यहीं पर उनकी 15 साल पुरानी दोस्ती एक स्वीकार्य किए गए सर्वव्यापी प्यार में बदल गई।
और दूसरा अहम मोड़?
दूसरा था सितंबर 2016 में उनका वो सार्वजनिक ऐलान, फेसबुक पर वो लंबा दिल से लिखा पोस्ट जिसमें उन्होंने पति से अलग होने और रया के साथ अपने रोमांटिक रिश्ते की बात दुनिया को बताई।
ये बहुत हिम्मत का काम था, जैसा आपने कहा।
हाँ, क्योंकि उनकी एक बनी बनाई छवि थी, आलोचना का डर था, लेकिन ये उनके लिए जरूरी था। अपने प्यार को सम्मान देना, उसे वैधता देना, ये बताना कि उनकी कहानी कोई त्रासदी नहीं बल्कि एक प्रेम कहानी है।
सही। और तीसरा निर्णायक मोड़?
तीसरा था जून 2017 में उनका वो प्रतिबद्धता समारोह। शादी नहीं, बल्कि जैसा गिलबर्ट ने कहा, प्यार का एक सरल और सहज समारोह।
करीबी दोस्तों के बीच?
हाँ, ये जानते हुए कि अंत करीब है, उन्होंने जानबूझकर खुशी और अर्थ का एक पल चुना। ये उनके बंधन का उत्सव था, उस अशांत नदी के बीच शांति का एक खूबसूरत द्वीप।
ये पूरी कहानी, ये यात्रा, आज के समय में हम इससे क्या सीख सकते हैं? इंसानी रिश्तों के बारे में क्या पता चलता है?
बहुत कुछ। सबसे पहले तो ये सोचने पर मजबूर करती है कि बिना स्वार्थ का प्यार कैसा दिखता है, उन छोटे छोटे खामोश पलों की अहमियत, देखभाल के उन कामों में कितनी गहरी आत्मीयता और पवित्रता है।
और ये नश्वरता का सामना करने के बारे में भी है, अपनी और दूसरों की।
बिल्कुल, जब मौत सामने हो तो क्या हम लड़ते हैं या साथ चलने का रास्ता चुनते हैं, और ये बात कि मुश्किल हालात में सिर्फ मौजूद रहना कितना कीमती है, बजाय चीजों को ठीक करने की कोशिश करने के।
हाँ, कभी कभी सबसे बड़ी मदद सिर्फ साथ होना ही होती है।
और गिलबर्ट की ईमानदारी अपनी कमजोरियों को लेकर, कि देखभाल करने वाला भी थक सकता है, निराश हो सकता है, ये भी एक अहम सबक है। खुद पर दया करना भी जरूरी है।
और प्रामाणिकता की ताकत, खासकर जब समय कम हो, दिखावे में जीने का कोई मतलब नहीं रहता।
एकदम, आज के दौर में जहां हम अक्सर कमजोरियों को छुपाते हैं, ये कहानी हमें हमारी साझा नाजुकता और जुड़ाव की गहरी जरूरत याद दिलाती है, खासकर मुश्किल वक्त में। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे अपनों को हमारी जरूरत होगी तो हम कैसे मौजूद रहेंगे।
तो इस गहरी और भावनात्मक बातचीत के अंत में, अगर हमें तीन मुख्य बातें निकालनी हो, एक भावनात्मक, एक बौद्धिक और एक सार्वभौमिक सीख, तो वो क्या होंगी?
जरूर। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। देखभाल के साधारण कामों में हाथ थामने में, सुनने में, बस साथ होने में गहरी आत्मीयता और पवित्रता है। प्यार अपने सबसे शक्तिशाली रूप में अक्सर इन्हीं छोटे शांत क्षणों में जाहिर होता है। ये रोमांटिक साथी होने से आगे बढ़कर एक पवित्र गवाह बनना है।
और दूसरी एक बौद्धिक स्तर की बात।
हाँ, दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। हम मुश्किल हालात को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। बीमारी से लड़ने की भाषा से हटकर किसी के साथ उनकी यात्रा पर साथ चलने के दर्शन को अपनाना मुमकिन है। ये विपत्ति को संघर्ष की भाषा से निकालकर समर्पण, स्वीकृति और करुणा की भाषा में देखना है। वो नदी वाला रूपक याद है ना?
हाँ बिल्कुल। और अंत में एक सार्वभौमिक सबक।
तीसरी और एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। हम अपनी परिस्थितियां नहीं चुन सकते, वो अक्सर हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। लेकिन हम ये हमेशा चुन सकते हैं कि हम उनका सामना कैसे करेंगे, और उससे भी जरूरी, हम एक दूसरे के लिए कैसे उपस्थित रहेंगे। एक सार्थक जीवन का असली प्रमाण शायद दर्द से बचने में नहीं, बल्कि दर्द के बीच भी हिम्मत से प्यार करने और साथ निभाने में है।
ये वाकई सोचने वाली बात है कि जीवन का सबसे गहरा पाठ कभी कभी सबसे मुश्किल रास्तों पर ही मिलता है। प्यार सिर्फ पाने में नहीं, किसी के लिए पूरी तरह मौजूद रहने में भी है, अंत तक।
बिल्कुल, ये किताब हमें यही याद दिलाती है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।